जो दर्द के साथ गुजर रहा है, जॉइंट्स में जिनको इंफ्लामेशन है, सूजन है, उसको गठिया है। गठिया वाले पेशेंट्स जितने भी हैं उन सब लोगों के लिए एक्सेस में प्रोटीन्स का लेना जो है आपको बंद करना पड़ेगा। गठिया के पेशेंट हैं उनका डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो जब भी वो बहुत हैवी चीज़ लेंगे खाने में उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा, CEO डॉक्टर शारदा मेडलाइफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल। आज मैं आप सब लोगों के साथ बात करूंगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। आप लोगों ने पहले भी मेरी काफ़ी वीडियोस और लाइव्स जो हैं वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर सुने होंगे या फिर देखे होंगे। आज मैं सामान्यतः बात करने जा रही हूँ सिर्फ 4-5 इसके जो बेसिक कारण हैं उसके ऊपर। गठिए को जानना बहुत ही ज़्यादा सरल लैंग्वेज में, जैसे एक लेमैन को भी समझ आए कि उनको ये जो बीमारी है इसका कारण जो है वो गठिया है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके डिफरेंट कारण क्या हो सकते हैं, अगर किसी को गठिया है तो उसमें कैसा आहार होना चाहिए, विहार होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। आम बात, आयुर्वेद में गठिये को आमवात कहा जाता है। आमवात का मतलब होता है जितना भी हम खाना खाते हैं जब वो पूरी तरह से कच्चा रस बनके ही हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे नसों और नाड़ियों तक पहुंच जाता है और एक टॉक्सिसिटी के रूप में हमारे शरीर में काम करता है और काफ़ी टाइम तक हमारे शरीर में मौजूद रहता है। उसके साथ धीरे धीरे करके हमारे जोड़ों में, नसों नाड़ियों में सूजन आना शुरू हो जाती है, जोड़ जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं, और आगे अगर हम बहुत लंबे समय की बात करें तो आगे चल के डिफॉर्मिटीज़ का एक शरीर के अंदर जो है वो पनपना शुरू हो जाती हैं। हाथ पैरों की उंगलियां जो हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है, वो डिफॉर्मिटी का लास्ट लेवल नॉर्मली होता है। या हमारे बड़े जोड़ जो हैं उनमें भी दर्द जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में आना जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी को गठिया है तो कैसे समझ आएगी कि उसको गठिया है। किसी भी मरीज को सामान्यतः सुबह उठने के साथ अगर हल्का हल्का बुखार लगता है, शरीर में अकड़न रहती है, बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, शरीर टूटता है, दर्द करता है, और जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है, दिन चढ़ता जाता है, उसके साथ उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम माने तो इसकी जो शुरुआत है वो यूरिक एसिड के शरीर में लगातार बड़े रहने की वजह से ही होती है। जब यूरिक एसिड जो है लंबे समय तक हमारे शरीर में विद्यमान रहता है और पूरी तरह से हम उसका उपचार जो है वो सही तरीके से नहीं करते तो वो धीरे धीरे आगे चल के गठिये का एक रूप ले लेता है। जिन लोगों को गठिया है, आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे टेस्ट आ गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी आ गई हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि एक जो पेशेंट है जो दर्द के साथ गुजर रहा है, जॉइंट्स में जिनको इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको गठिया है। जैसे कि CRP, ESR या फिर RA फैक्टर का पॉजिटिव हो जाना, NTCCP, ANA, इस तरह के डिफरेंट जितने भी कैटेगराइज्ड टेस्ट होते हैं, ये डीप इन्वेस्टिगेशंस में जाके तब हमें ये क्लियर हो जाता है कि एक जो पेशेंट है वो पूरी तरह से गठिये के साथ प्रभावित है। अब इसका कारण क्या है आयुर्वेद के अनुसार, अब हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण अगर हम आयुर्वेद की बात माने तो इसका जो कारण है, जितना भी हम खाना पीना लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, जब वो पूरी तरह से पचता नहीं है तो वो एक कच्चा रस हमारे शरीर में बनाता है। जो कच्चा रस है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी नसों नाड़ियों में और जॉइंट्स में जाके आगे रचना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक रहने के साथ साथ वो एक डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। ये इसका बहुत बड़ा कारण है। और दूसरे कारण की हम बात करें तो जैसे कि लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना या फिर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहना, जैसे छोटी मोटी वॉक नहीं करना या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेना, भारी जो भोजन होता है वो बहुत ज़्यादा लेना, खाने में दालों का या फिर नॉन वेज इत्यादि का सेवन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में करना, बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में करना। इस तरह की चीज़ें लेने के साथ जो है वो हमारे शरीर में गठिया जो है पनपना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इस तरह का भारी खाना लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। मंदाग्नि की समस्या ऐसे पेशेंट्स को हमेशा रहती है, तो जिनका भी पाचक सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा, धीरे धीरे उसके साथ ही कच्चा जो रस है वो बनेगा और जोड़ों में जो है वो दर्द आना शुरू हो जाएगा। लक्षण की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट को हमेशा छोटे जोड़ों में सूजन बनी रहती है, हल्की हल्की सी एक रेडनेस सी बनी रहती है, फीवरिश फीलिंग रहती है, जॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, एक हल्का सा टच भी लगे तो भी उनको असहनीय वेदना होती है, दर्द होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द रहती है। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस के साथ इन्फेक्शन जो है वो होने उसके अटैक्स होने की वजह से, कई बार फीवर के अटैक्स होने की वजह से भी गठिया जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे कि उसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें पथ्य क्या है, पथ्य का मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं और उनके खाने के साथ जो है शरीर हमारा स्वस्थ रह सकता है और जितना भी जिस लेवल पे भी गठिया है वो जो गठिये का लेवल है वो किस लेवल तक धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर हम पथ्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि हम नॉर्मली ऐसा खाना खाएं, ऐसा भोजन खाएं जो खाने में बहुत जल्दी पचे, सुपाच्य हो, हल्का भोजन हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी बुखार हो जाता है या फिर कोई फीवर हो जाता है या कुछ समय के लिए हम लोग बीमार पड़ते हैं तो नॉर्मली घरों में खिचड़ी का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, मूंग दाल, थोड़े से चावल, हल्की सी सौंठ और देसी घी, इस तरह की चीज़ें डाल के खिचड़ी बनती है या फिर हल्का सा दलिया बनता है या सूप या फिर जूस या फिर फ्रूट्स, इस तरह की हम डाइट जो है वो ज़्यादा लेते हैं। तो जिन भी लोगों को गठिये की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक तो गर्म पानी का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करें, जब भी उनको प्यास लगे और या फिर उन्होंने कभी नहाना हो या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए पानी का यूज़ करना हो तो वो गर्म पानी होना चाहिए। उसके साथ उनके जॉइंट्स में, मसल्स में इन्फ्लामेशन, अकड़न नहीं आएगी, स्टिफनेस नहीं आएगी। और खाने में दालों का उपयोग जो है वो बहुत कम करें, ज़्यादातर जो दाल खाने में यूज़ की जा सकती है वो है धुली हुई मूंग की दाल और वो उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। सब्जियों का उपयोग इसमें बहुत अच्छा रहता है, हरी सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। बाकी हल्का भोजन जो है जैसे फल हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स लेकिन भिगो कर लेने हैं, और चटनी होगी किसी भी प्रकार की, फल हर तरह के ले सकते हैं केला छोड़ के, और मूली के पत्तों की साग बना सकते हैं या भाजी बना सकते हैं, लेकिन मूली के पत्तों की। बथुए का साग इसमें बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले करता है। और आप अदरक की सब्जी ले सकते हो, लहसुन की सब्जी ले सकते हो, ऐसी चीज़ें जो हल्की सी नेचर में गर्म भी हों और पचने में जो है वो जल्दी सुपाच्य हों। घी का उपयोग जो है वो गठिये वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। जितने भी पेशेंट इस रोग के साथ पीड़ित हैं वो शुद्ध गाय, देसी गाय का घी लें उसके साथ, ये इसमें आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे, स्टेप पे अपथ्य, ऐसी क्या चीज़ है जो गठिये वाले पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। गठिये वाले पेशेंट्स जितने भी हैं उन सब लोगों के लिए एक्सेस में प्रोटीन्स का लेना जो है आपको बंद करना पड़ेगा। उसमें बहुत एक्सेस में दालें आ जाती हैं, सफ़ेद चने, राजमा, माँ की दाल आ जाती है और चने की दाल आ जाती है, साग आ जाता है सरसों का, चाय, कॉफ़ी, जितने भी कैफीन या फिर स्टिमुलेटिंग फूड्स हैं, फास्ट फूड है, मैदा है, चीनी है, सफ़ेद नमक है, ये सारी चीज़ें रिफाइंड या फिर प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करने वाली हैं। और दूध इसमें अवॉइड करने के लिए सुजेस्ट किया जाता है, दही सुजेस्ट किया जाता है, पनीर अवॉइड करना चाहिए पेशेंट्स को, सोयाबीन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, और एग्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है। जिस भी चीज़ में प्रोटीन बहुत एक्सेस लेवल में हो, क्योंकि जो भी गठिये के पेशेंट हैं उनका डाइजेशन डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो जब भी वो बहुत हैवी चीज़ लेंगे खाने में उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो जितनी भी हैवी फूड है गठिये वाले मरीजों को पूरी तरह से उसमें पाचन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जिस भी चीज़ का पाचन पूरी तरह से नहीं होगा वो आगे चल के कच्चा रस बनाएगी और जितना भी फूड है हमारे पेट में या फिर आंतों में सड़ना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से वात प्रकोपित होगा और आगे चल के जो है वो दर्दें आना शुरू हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि जितने भी गठिये के मरीज हैं, अगर काफ़ी मरीज इस तरह से भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमने कोई भी दवाई नहीं खानी और हमने कोई इलाज नहीं करवाना, हम ऐसे ही रहेंगे, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? ऐसे मरीजों की अगर हम बात करें तो ऐसे मरीजों के लिए सबसे जो बड़ा नुकसान है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें क्या होता है कि बड़े जितने हमारे जोड़ हैं उसके अंदर जितना भी सॉफ्ट कुशंस होते हैं, साइनोवियल फ्लूड होता है और कुशंस जितने भी होते हैं, जितने हमारी सॉफ्ट टेंडर जॉइंट्स होते हैं, उसकी जो हड्डियां हैं अंदर से खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़े लेवल पे डिफॉर्मिटी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है और अंत में फिर हमें ऑपरेशन की ही सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ आँखों में ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, कभी कभी तो ऐसे मरीजों की आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके साथ पेशेंट्स को जो लॉन्ग टर्म पे मेडिकेशंस पे रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लंबे समय से दवाई के ऊपर निर्भर होने के साथ जो वेस्टर्न मेडिकेशंस है उसके बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। आयुर्वेद इस बीमारी में एक बहुत ही अच्छा अपना पर्सपेक्टिव रखता है, क्योंकि आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं जो हम ज़्यादातर गठिये के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो चिकित्सा पद्धति रहती है उसमें बिगनिंग में सबसे पहले शरीर की सफाई पर ध्यान दिया जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जितना भी कचरा मौजूद है वो सारा का सारा जो है वो साफ हो जाए, बॉडी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद अगर आपके स्किन लेवल पे टॉक्सिन्स हैं या फिर गंदगी है जो पसीने से बाहर निकलनी चाहिए थी लेकिन वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रही है, तो उसके लिए स्वेदन जो है, स्टीम जो है, भाप स्नान जो है वो, या फिर सूर्य स्नान जो है उसको रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ लंघन का इसमें बहुत अच्छा जो है वो रोल बताया गया है, ऐसे मरीजों को फास्ट करना बताया जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे पेशेंट्स फास्ट करते हैं तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है और शरीर अंदर से साफ हो जाता है। विरेचन औषधियाँ देकर भी करवाया जाता है, कई बार नेचुरल परगेशंस भी होती हैं, कई बार मेडिकेटेड परगेशंस भी इसमें करवाई जाती हैं, और इसके जो गठिये से जूझ रहे मरीज होते हैं उनको पता चलेगा कि ये एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट है। जब भी हम शरीर का सुशोधन पूरी तरह से कर लेते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं पूरी तरह से, तो आधी बीमारी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम में ही निकल जाती है। शरीर जब साफ होता है तो आधी बीमारी जो है वो पूरी तरह से वैसे ही निकल जाती है, और जो बाकी दवाई रहेगी उसके लिए परहेज और बाकी जो दवाइयां हैं वो अकॉर्डिंग, हर पेशेंट की दवाई जो है हर पेशेंट से विभिन्न हो सकती है, क्योंकि क्योंकि हर पेशेंट की दिनचर्या, उसके सोचने का तरीका, खान पीन का तरीका जो है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। अभी मैंने बहुत छोटे 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 आपके साथ स्टेप्स जो हैं वो शेयर किए हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आप लोगों के काम आए। और गठिये से रिलेटेड अगर आप लोगों की और भी कोई क्वायरी है तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, या जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक्स में नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या वेबसाइट की डिटेल्स दी जाएगी आप उस पर भी हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार जी।